ओम शांति। तो आज हाँ एक लाइन छोड़ के आज मधुबन के अंदर दिल्ली दरबार सज गया है, है ना? देश की राजधानी से निकलकर कहाँ आके पहुंचे हैं? अध्यात्म की राजधानी में आके पहुंचे हैं। और फिर वो जो देश की राजधानी है वो तो हमारी सतयुग की राजधानी बन जाएगी, लेकिन वो सतयुग की राजधानी बने उसके लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है। तो ऐसी भट्टी करने के लिए कि जहां हम बाप समान बन जाए, संपन्न और संपूर्ण बन जाए, आप सभी इस मधुबन धरनी में पधारे हैं। एक ऐसी धरनी जहां वर्षों तक शिव बाबा का अवतरण होता रहा, वर्षों तक मम्मा बाबा ने तपस्या की, हमारे दादियों और दादाओं ने तपस्या की, जिसके फल स्वरूप इस धरनी के कण कण में तपस्या के वाइब्रेशन भरे हैं। तो ऐसी पावरफुल धरनी पर आप सभी भी तपस्या करने पहुंचे हैं, तो आपका तहे दिल से इस तपस्या भूमि में बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और चूंकि यहां पहुंचने से पहले अवश्य ही आपने बहुत कुछ प्लानिंग की होगी कि हमारे पीछे हमारे कारोबार कौन संभालेंगे, कैसे होगा, वो सब करके अपनी जिम्मेवारियां दूसरों को सौंप कर, या यूं कहें कि बाबा को ही सौंप कर आप सभी यहां पर पधारे हैं। तो यहां आने के बाद अभी आपके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, नहीं है ना? जिम्मेवारियों से मुक्त है, सिवाय दो जिम्मेवारियों के। दो जिम्मेवारियां अभी भी है, एक जिम्मेवारी भोजन की, दूसरी जिम्मेवारी भजन की, है ना? मेन तो भजन की है, और वो भजन कर सके इसके लिए इसको भोजन देना पड़ेगा। तो सिर्फ यही दो जिम्मेवारियां हैं जो आपको यहां निभानी है, इसके अलावा तो और कोई जिम्मेवारी नहीं है। और इसलिए आप जो अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पहुंचे हैं, तो आपके अमूल्य समय का एक एक पल हर घड़ी सफल हो, इसके लिए आप यहां जो भट्टी करने आए हैं उसकी एक दिनचर्या बनाई गई है कि जिस दिनचर्या को फॉलो अगर करेंगे तो सचमुच हमारा यहां आना, हमारा यहां समय देना सार्थक होगा। तो हमें दिनचर्या को फॉलो करना होगा, और कुछ विशेष डायरेक्शंस भी अगर हम फॉलो करेंगे तो सचमुच हमारा इस भट्टी में आना बहुत बहुत सार्थक रहेगा। और सार्थक रहेगा मतलब, जो कहते हैं मानसरोवर में डुबकी लगाते समय तो साधारण थे, लेकिन डुबकी लगाकर बाहर निकले तो परी और परीजादे बन गए। तो ऐसे ही हम बेशक बाबा के बच्चे हैं, वर्षों से पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, एकदम साधारण तो हम है नहीं, वो तो पहले थे शूद्र, बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बना दिया है, लेकिन अब हमारी यात्रा है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की, क्योंकि फरिश्ता बनने के बाद ही हम देवता बनेंगे। तो हमें फरिश्ता बनना है, उस और आगे बढ़ना है। तो वो परिवर्तन हम अवश्य इस भट्टी से महसूस करें कि हम जैसे आए भट्टी के बाद उसमें कुछ न कुछ वृद्धि हो, कुछ न कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन हो, एक ग्रोथ महसूस हो, हम अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं ऐसी महसूसता हो, ऐसी फीलिंग हो। तो उसके लिए भट्टी की दिनचर्या को पूरा फॉलो करेंगे। तो क्या है भट्टी की दिनचर्या, वो सुनाने के लिए ही मैं आज आपके सम्मुख बैठी हूँ। जैसे आज की पहले दिन की दिनचर्या, आज आपका स्वागत दिवस है, योग तिलक के साथ आपने इसका शुभारंभ हो गया है आपकी भट्टी का, और हम आपको दिनचर्या सुना रहे हैं। 6:30 बजे फिर हमारे बीच में शीलू दीदी आएंगे, जो भट्टी का लक्ष्य विस्तार से समझाएंगे, और 7:30 बजे हमारा मधुर वाणी ग्रुप आएगा और स्वागत गीत की प्रस्तुति के द्वारा आप सभी का भव्य स्वागत करेंगे। और फिर हमारे बीच में शशि दीदी आएंगे, जो भट्टी के लिए शुभकामनाएं प्रेरणाएं देंगे और आपको स्वागत टोली देकर आपका मुख भी मीठा कराएंगे। और इस प्रकार से आज का कार्यक्रम पूरा होगा, आप भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। आने वाले 3 दिन की दिनचर्या कैसी होगी वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ब्राह्मणों की दिनचर्या तो अमृत वेले से शुरू होती है, तो चूंकि जैसे पहले ही कहा कोई और जिम्मेवारियां नहीं है, सिर्फ 2 ही जिम्मेवारी है, इसलिए आप चाहे जितना जल्दी उठना चाहे अमृत वेला उठ सकते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है और न ही किसी को हम एक टाइम देंगे कि आप इस समय पर उठो, क्योंकि हर एक का अपनी अपना शारीरिक स्वास्थ्य होता है, हर एक की अपनी आयु है, शरीर की क्षमता है, वहाँ का वातावरण यहाँ का वातावरण यूं कहे मौसम उसका फर्क है, उसमें ढलना ये हर एक के शरीर की अपना अपना सामर्थ्य होता है, इसलिए जितना जिससे बन सकता है उतना जल्दी उठेंगे। लेकिन हाँ, 4 बजे तो सभी को यहाँ पहुँचना होगा, 4 बजे यहाँ पहुँचेंगे सभी और संगठित रूप से पावरफुल अमृत वेला योग हम सभी यहाँ पर करेंगे। 4 से 4:45 यहाँ पर योग। रही बात कि यहाँ आने से पहले 4 धाम करें या यहाँ आने के बाद में 4 धाम करें, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो 4 धाम तो पहले ही हो जाने वाले हैं, लेकिन नहीं कि अगर बिल्कुल टाइम पर आ रहे हैं आप कि 4 बजे का है तो हम तभी जाएंगे, तो वहां जाने से पहले बेटर है इधर ही आ जाए। और फिर भी अगर आप कहें कि नहीं नहीं मुझे तो अभी फिर भी मार्जिन है 10-15 मिनट की, तो ये ध्यान देना कि 2 जो धाम है बाबा के छोटे छोटे हैं, कुटिया और कमरा, ये बहुत छोटे स्थान है, और सुबह के समय में मधुबन वाले भी होंगे, हॉस्पिटल वाले भी होंगे, यहाँ के सेवाधारी भी होंगे और आप इतने सब भी, तो हो सकता है कि उस समय जब आप वहां गए और आपको दृश्य दिख रहा है बस लोग उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, तो फिर ऐसे समय पर वहां आप न जाएं, यहां से योग जब पूरा हो जाता है फिर जाए, बाकी वो 2 धाम तो है ही बड़े, वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। तो यहां से 4 से 4:45 योग करके फिर आप वापस जाएंगे अपने अपने कमरों में, पुनः स्नान आदि करके ओम शांति भवन में पहुंचेंगे 6:30 बजे, जहां पर 6:30 से 7 बजे तक पुनः संगठित योग चलेगा और 7 से 8 बाबा की मुरली हम सभी सुनेंगे, मुरली के बाद गीत और उसके बाद यहाँ वाले सभी भाई बहने उठ जाएंगे, लेकिन आप जो खास भट्टी करने आए हैं आपको वहाँ पर बैठे रहना होगा, क्योंकि प्रतिदिन की दिनचर्या आपको मुरली क्लास के बाद ही बताई जाएंगी। यहाँ जो मैं आपको दिनचर्या सुना रही हूँ वो दिनचर्या की एक सामान्य रूपरेखा दे रही हूँ। मैं ये डिटेल अभी नहीं बताऊंगी कि किस क्लास में कौन सा स्पीकर आएगा, उसका विषय क्या रहेगा, ये सब मैं अभी डिटेल नहीं करूंगी। क्यों, अगर मैं कर भी दूं इकट्ठा तीनों ही दिन का याद तो रहने वाला है नहीं। और चलो नोट भी कर लिए, लेकिन ब्राह्मणों के प्रोग्राम तो पल पल चेंज होते रहते हैं और फिर बाद में फिर बार बार बोलना कि ये वाला इसकी जगह पे ये, उसकी जगह पे ये, तो बिना मतलब का कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए वो डिटेल सारा प्रतिदिन मुरली क्लास के बाद ही बताया जाएगा। हर दिन के लिए एक समान भी होगा, वो समान भी उसी समय बताया जाएगा। आज चूंकि तपस्या का पहला दिन है तो आज का समान है मैं तपस्वी मूरत आत्मा हूं। और इन जनरल तो हर समान का एक सामान्य अर्थ आप सभी को समझता ही है। रही बात उसके टेस्ट की, तो आज अभी जब हम डायरेक्शंस आदि देंगे तो क्या तपस्या होती है वो आपको थोड़ा और डिटेल में क्लियर होगा। शीलू बहन भी क्लास कराएंगे तो डिटेल उसका मिल जाएगा। और आने वाले दिनों में भी जो समान दिया जाएगा उसी समान से रिलेटेड कोई न कोई दिन भर में एक क्लास भी होगी, तो उसकी डेप्थ भी आपको समझ में आ जाएगी। तो जैसे कहा कि आज का समान है मैं तपस्वी मूरत आत्मा हूं, तो इस समान अभी 8 सवार तक तो यहीं बैठे रहेंगे आप पूरे, तो बाकी कल तक जो आपका समय है उस समान में आप रमण करेंगे। और फिर कल जैसे कहा कि अमृत वेला, फिर मुरली, और वहां पर आपको दिनचर्या सुनाई जाएगी, और दिनचर्या सुनने के बाद आप पहुंचेंगे डाइनिंग हॉल में। आज सुबह ही पहुंच गए हैं आप, कई तो कल ही पहुंच गए थे, तो आपको पता ही है कि आपको खाना कहाँ खाना है। फिर खाने के नाम पे चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो दोपहर का भोजन हो, चाहे वो रात्रि का भोजन हो, तीनों ही समय का जो भोजन है, जो खाने की व्यवस्था है, ऑफिशियली ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में है। हाँ, अगर आपको कोई स्पेशल डायरेक्शन मिला हुआ है तो आप उनको फॉलो करेंगे, अदरवाइज इन जनरल ऑफिशियली आपका भोजन जो है वो ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में होगा। और ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में भी क्या होता है, बाबा का ये बड़ा घर है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, सभी कॉम्प्लेक्सेस में कुछ न कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, और वे एक दिन अवश्य पांडव भवन की विजिट करने यहाँ आते हैं, तो उस समय उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था यही होती है, और वो भी ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में ही होती है। तो आप उस भीड़ में कहीं गुम न हो जाओ, इसलिए उस दिन जिस दिन नीचे वाले भाई बहने ऊपर आ रहे हैं आपका दोपहर का भोजन होगा तो ऊपर ही, लेकिन ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में भी एक छोटा डाइनिंग हॉल है, उस डाइनिंग हॉल में आपको भोजन स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन पता कैसे चले कि आप खास भट्टी वाले हैं, तो ये बैज आपकी निशानी होगी। बैज होगा तो उस छोटे वाले डाइनिंग हॉल में एंट्री मिलेगी, और इसलिए जब तक आप इस भट्टी में यहां पर हो 4-5 दिन, आपका बैज आपको पहना हुआ रहे। एक तो डाइनिंग हॉल में एंट्री के लिए, दूसरा जब बाबा के घर से आपको सौगात मिलेगी तो क्लास के आकर्षण में तो अन्य भाई बहने भी आकर क्लास में बैठ जाते हैं, लेकिन सौगात तो सिर्फ भट्टी वालों को मिलती है। फिर भट्टी वालों की पहचान उनका बैज होता है, तो उस समय भी बैज आपका चाहिए होगा। और कई भाई बहने को जो अकोमोडेशन रहने की व्यवस्था मिली है वो पांडव भवन परिसर के बाहर मिली है कईयों को। तो जब आप सुबह अमृत वेला करने यहाँ आएंगे तो गेट पर आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। अगर बैज नहीं होगा तो सुबह ही आपका वो मौन तोड़ देगा। हाँ, और इसलिए बेटर है कि अगर बैज पहना हुआ है आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा और आप आराम से अपना मौन का पालन करते हुए भीतर आ सकते हैं। तो ये तीन कारण से आपका बैज आपको हमेशा पहना हुआ रहे। तो हम बता रहे थे कि भोजन की व्यवस्था ऊपर है और पर्टिकुलर जब नीचे वाले लोग आएंगे तो ऊपर में भी अंदर। बाकी किसी को कभी ऐसा लगता है कि ऊपर जाना चढ़ना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे समय पे लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नीचे के डाइनिंग हॉल के पीछे वाले हिस्से में है। तो वो लिफ्ट यूज करके आप ऊपर जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि मैं लिफ्ट भी नहीं यूज कर सकता, मैं कोई जल्दी में हूँ, कुछ अर्जेंट है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो सिर्फ कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है उसी केस में आप भोजन नीचे करेंगे, अन्यथा ऑफिशियली आपके भोजन की व्यवस्था ऊपर है। और वैसे भी आप बहुत सुंदर लक्ष्य के साथ आते हैं, कहा ना भट्टी का लक्ष्य ही है बाप समान बनना है, संपन्नता की ओर बढ़ना है। किस बाप को खुशी नहीं होगी जब बच्चे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हो। हाँ, और खुशी में बाप को लगता है मैं इन बच्चों की क्या नहीं खातिरी करूं, तो इस बाप को भी बहुत खुशी होती है कि बच्चे सुंदर लक्ष्य के साथ आए हैं तो मैं भी इन बच्चों की बहुत खातिरी करूं। तो बाप के तरफ से जो आपकी स्पेशल खातिरी होगी वो ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में होगी, नीचे वाले में नहीं। तो खातिरी नहीं मिस करना है, इसलिए भी आपको भोजन कहाँ स्वीकार करना है, ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में। तो ठीक है, तो तीनों समय के खाने की व्यवस्था ऊपर और तीनों समय के पीने की व्यवस्था नीचे। कौन से तीन समय हैं पीने के? एक तो अमृत वेला चाय पीते हैं और दूसरा शाम को जो चाय टोली होती है वो वाली चाय, और दिन में दो क्लासेस के बीच में एक ब्रेक रखा गया है और उस ब्रेक में समर के अनुसार कोई न कोई ड्रिंक या कुछ ठंडा खाने का चीज कुछ रखते हैं। तो वो ब्रेक में जो आपको मिलेगा मेजोरिटी पीने के लिए ही मिलता है। तो तीनों समय पीने का व्यवस्था जो है वो नीचे, खाने की व्यवस्था जो है ऊपर। क्लियर? तो जैसे कहा मुरली क्लास सुन के दिनचर्या सुन के ऊपर जाएंगे नाश्ते के लिए। नाश्ते के बाद का जो आपका समय है आपका अपना फ्री रहने का, रिलैक्स रहने का समय है। और जब हम फ्री शब्द यूज करते हैं इसका मतलब वो समय कमरे में जाके कपड़े आदि धुलाई करने के लिए नहीं है, मात्र 4-5 दिन के लिए तो आए हैं, इतनी तो तैयारी करके आए होंगे। तो वह छोटी छोटी बातों में उस टाइम को खत्म नहीं करना है और न ही गप्पे लगाने में। वो जो आपका रिलैक्स फ्री वाला टाइम है, खुले बाबा के इतने बड़े आंगन में, इतने घर में, चाहे कहीं पे भी खड़े हो जाओ, कहा ना कण कण में तपस्या के वाइब्रेशन भरे हैं, उस तपस्या की महक को, उस खुशबू को खुले दिमाग से बिना कोई प्रेशर के साथ, बिना कुछ बातों के जोर के साथ खुला आराम से उसको एंजॉय करो। और उसके बाद 9 से 10 बजे का समय आपका खास चार धाम की यात्रा के लिए। पांडव भवन का मुख्य आकर्षण तो चार धाम ही है। याद करो वो दिन जब नीचे आते हैं बाबा मिलन के लिए, और फिर बस भर के आते हैं, फिर पार्टी को पूरा घुमाना भी है, खाना भी खिलाना है। चार धाम करने जाते तो बहुत लंबी कतारें लगी पड़ी हैं, तो कितने सेकंड के लिए हम जा पाते हैं? खास आते हैं चार धाम के नाम पर वहां समय कितना दे पाते हैं हम? बहुत ही कम। उसी आश को पूरा करने के लिए तो पांडवों की भट्टी का चांस लिया है ना? इसलिए हमने भरपूर समय दिया है आपको कि आप चार धाम की यात्रा करो। तो 9 से 10 बजे का टाइम आपका पूरा ही चार धाम की यात्रा का। लेकिन जब चार धाम शब्द बोले, इसका मतलब उस एक घंटे में चारों जगह भाग भाग कर पहुंचना है? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पूरे 3-4 दिन है आप यहाँ पे। आराम से एक एक जगह बैठकर आप वहां का वाइब्रेशन एब्सॉर्ब करो, अपने अंदर भरो उसको। लेकिन हाँ, चार में से 2 धाम बहुत छोटे हैं, कुटिया और कमरा, वहां ज्यादा नहीं बैठना, वहां सिर्फ 5 और 10 मिनट। हाँ, आप अगर ऐसे समय पर वहां गए हैं कि जब बाहर कोई क्यू नहीं है, कोई इंतजार में नहीं है, तब भले बैठे रहो। लेकिन जब आप ऐसे समय पर बैठे हैं कि बाहर और भी लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा हक 5-10 मिनट, उसके बाद उनों का भी हक है। और इसलिए वहां पर बैठकर पत्र भी नहीं लिखना है। हाँ, उसके भी 3 कारण। एक तो बैठना ही 5-10 मिनट के लिए है ताकि दूसरों को भी लाभ मिले, लेकिन पत्र लिखने बैठेंगे तो समय का अंदाज नहीं रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जब पत्र लिखने बैठते हैं तो कब हमारे हाथ से खुली पेन छूट के उस सफेद बिछायत पर गिर जाती है और उस पे धब्बे लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ये दूसरा कारण है। और नंबर 3, कि जब हम कॉटेज में, कुटिया में या कमरे में पत्र लिखने का सोचते भी हैं, तो लिखने से पहले जेब टटोलेंगे डायरी पेन निकालने के लिए या अपना थैला या बैग, तो कई बार उसको ढूंढने में ही मेहनत लग जाती है और वो अपने मन ही मन मुंह में बात करते रहते हैं। क्योंकि हम अपने भी होते हैं तो हमें नहीं पता होता है यहाँ बैठे हुए एकांत में जो बैठे हैं लोग, उनके लिए छोटी सी आवाज भी क्या कर रही है? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। और उतना ही नहीं, फिर जब मिल गई ना वो डायरी पेन, फटफट फटफट करके पन्ने पलटाएंगे, अपने ही होश में होते हैं ना, दूसरों का कुछ पता नहीं होता है, तो इसलिए उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसलिए 3 कारण है कि कुटिया में बैठकर और कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिखे और वहां ज्यादा समय भी नहीं बैठे। हाँ, कुटिया के बाहर भी चेयर्स लगी हुई है परमानेंट, कमरे के बाहर भी है चेयर परमानेंट, वहां भले बैठो, हर्जा नहीं है। हिस्ट्री हॉल तो है ही बड़ा, टावर ऑफ पीस भी खुला बड़ा है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे जब 9 से 10 चार धाम की आपको यात्रा करना है और बाबा को पत्र लिखना है। फिर 10 बजे आप सभी को इसी हॉल में पहुंचना है। 10 से 1 पूरे 3 घंटे आपके इसी हॉल के लिए रहेंगे। क्या करेंगे हम 3 घंटों में? तो 10 से 10:30 पहला आधा घंटा हम सभी संगठित योग करेंगे, और उसके बाद 10:30 से 11:30 हमारी पहली क्लास होगी, और 11:30 से 12:00 आपको ब्रेक मिलेगा, कि जिस ब्रेक में आप किचन की तरफ जाके जो भी आपके लिए ड्रिंक रखा गया है वो सेवन करेंगे। आपको फ्रेश होना है, वॉशरूम जाना है, स्ट्रेचिंग करना है, वहां पर अपना समय यूज करेंगे और वापस ट्रैफिक कंट्रोल यहीं पर आकर करेंगे। तक जाकर हम दूसरी क्लास 12 बजे आरंभ करेंगे। तो हमारी दूसरी क्लास का समय होगा 12 से 1। तो अपने आप 3 घंटे पूरे हो गए, आधा घंटा योग में, आधा घंटा ब्रेक में, हो गया 1 घंटा और 1-1 घंटे की 2 क्लास, पूरे 3 घंटे हो गए। तो ये तीनों दिन की इकट्ठी दिनचर्या है, मंगल, बुध और गुरु। सुबह में 10 से 1 या जो अमृत वेले से जो शुरू है सेम है 1 बजे तक। फिर 1 बजे के बाद आप विश्राम करने जाएंगे, भोजन करेंगे, भोजन के बाद विश्राम, विश्राम के बाद शाम की चाय टोली और शाम की चाय टोली के बाद पुनः 4:30 से 5 चार धाम की यात्रा और 5 बजे आप इसी हॉल में पहुंचेंगे और 5 से 6 संगठित योग। सुबह हमने आपको चार धाम के लिए पूरा 1 घंटा दिया है और यहाँ आकर आधा घंटा हो गए, 1.5 घंटे। और शाम को हमने क्या कर दिया, चार धाम आधा घंटा और यहाँ पर 1 घंटा, 1.5 घंटा वो और 1.5 घंटा शाम का। बाकी अमृत वेला और नुमा शाम वो तो हम वैसे भी डेली रूटीन में कर रहे थे, वो तो डेली रूटीन में हम करते ही है ना, ब्राह्मणों का नियम है ना वो तो। और जब हम यहाँ योग तपस्या करने आए हैं तो योग का चार्ट तो कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसीलिए वो सुबह 1.5 घंटा और ये शाम का 1.5 घंटा, इसका अवश्य लाभ लेना है, इसकी अवश्य कदर करना है। ऐसे नहीं जाके योगी तो करना है ना, वो तो कभी भी कर लेंगे ना, जरूरी है क्या हॉल में जाके बैठना है योग के लिए, नहीं, संगठन का भी तो महत्व है ना। तो इसलिए चूंकि आए ही है हम योग तपस्या करने, तो ये जो एक्स्ट्रा योग मिल रहा है भट्टी के नाम पर, इसका पूरा लाभ लेंगे। वरना अमृत वेला और शाम का नुमा शाम तो वैसे भी कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा क्या किया फिर हमने भट्टी के नाम पे, ठीक है ना। तो शाम को 5 से 6 संगठित योग करेंगे और फिर 6 से 7 क्लास होगी और 7 से 7.5 नुमा शाम का योग होगा, 7:30 हो जाएंगे। और फिर तीनों दिन शाम का थोड़ा अलग अलग प्रोग्राम है। तो ये मंगलवार के दिन ऐसा रहेगा, 5 से 7:30 तो क्लियर हो गया, 7:30 बजे आपको बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी और फिर आप भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे और उसके बाद का टाइम आपका अपना फ्री और रिलैक्स रहने का, और फिर समय पर गुड नाइट करके अपने अपने कमरों में विश्राम करने जाने का। ये मंगल का। बुध की शाम को क्या रहेगा कि आप खास माउंट आबू में आए हैं, समर के टाइम पे आए हैं और आके सिर्फ 4 दीवालों में बैठ के भट्टी करके चले गए तो मन नहीं भरेगा, थोड़ा समय खुले में भी तो बैठे ना, लगेगा ना ऐसे, और वो भी माउंट में, समर में। और इसलिए हमने सबके लिए प्रोग्राम रखा है कि बुधवार के दिन 5 बजे यहाँ आने के बजाय आप एकत्रित हो जाइए पांडव भवन का जो पीछे वाला गेट है, जो भोलेनाथ बाबा का जो भंडारा है उस तरफ है, वहाँ एकत्रित हो जाए और आपको वहाँ से नक्की लेक और बाबा की पहाड़ी की ओर लेके जाएंगे कि जहाँ पर आप जाके खुले में नुमा श्याम योग कीजिए, कुदरत की गोद में बैठकर बाबा की पहाड़ी जहाँ बाबा जाया करते थे बच्चों को लेकर, वहाँ पे एंजॉय करें। लेकिन वहाँ पर फिर ये ध्यान रखना है कि वे ही लोग जाएंगे जो अपने में सामर्थ्य रखते हैं कि हाँ हम पीछे वाले गेट से नक्की लेक तक वहाँ तक जा सकते हैं, बाबा की पहाड़ी चढ़ सकते हैं। तो जिनको सिर्फ चलने का सामर्थ है वो वहीं तक जाएंगे, नक्की लेक में जहाँ उन्हें झंडा लगा हुआ है, वहाँ पर हमारी छतरी भी बनी हुई है, वहाँ पर बैठ के योग कर सकते हैं, उतना तो चलना पड़ेगा। इसीलिए अटेंशन रखेंगे, अपने सामर्थ्य को ध्यान देंगे और वहीं पर वहाँ जाते जाते ही रास्ते में ऊपर चढ़ने का बाबा की पहाड़ी का मार्ग दिखता है, तो जो चढ़ सकते हैं वो उस तरफ चले जाएंगे, जो चढ़ नहीं सकते वो वहां पे जो बैठने का स्थान है वहां बैठकर योग कर सकते हैं। और जो सोचते हैं कि नहीं, हमें नहीं तो नकी लेक भी नहीं जाना है, हमें पहाड़ी भी नहीं जाना है, तो यहाँ पर चारों धाम की यात्रा करते हुए टावर ऑफ पीस पर नमाज शाम का योग कर सकते हैं। तो शाम को 5 बजे वहां एकत्रित होंगे, 5:15 के बीच में। 5:15 से हमारे भाई खास आपको गाइड करते हुए लेकर जाएंगे वहां पर, जो बाबा के समय का पेड़ है, जहां से बाबा रुमाल हिलाकर सबको छुट्टी देते हैं, वो रास्ते में जाते जाते पड़ेगा। फिर वहां रोज गार्डन है, रोज गार्डन के पीछे वाले गेट से आप एंट्री करेंगे और उसमें वॉक करेंगे, तो अंदर में एक यादगार कुआं भी है, हालांकि वो बंद है पर यादगार है, बाबा के समय का कुआं है, कि उस कुएं से उन दिनों में बाल्टियों में पानी भर भर के यहाँ पांडव भवन में लेकर आते थे। तो उस पर एक नजर डाल देंगे और चलते चलते आगे बढ़ेंगे तो उसका सामने वाला गेट आ जाता है, उस रोज गार्डन का, और सामने वाले गेट पे पहुंचेंगे, अरे ये रास्ता तो नक्की लेक जाता है, तो वहां से आपको नक्की लेक और पहाड़ी लेकर जाएंगे। तो बुधवार के दिन 5:15 तक वहां एकत्रित होंगे, खुले में जाके नुमा शाम योग करेंगे और कोशिश करेंगे 7:15 तक आप वापस आ जाएं, क्योंकि आने के बाद लगेगा थोड़ा कमरे में जाके फ्रेश हुए, और फिर 7:30 बजे उस दिन खुले में ही भोजन करना है। सुखधाम के आंगन में पिकनिक के रूप में ब्रह्मा भोजन आपका होगा। तो खुले में एंजॉय करने का दिन है, परंतु कैसे एंजॉय करना है, फरिश्ता बनकर, लौकिक रीति से नहीं, अलौकिक रीति से। और वो भोजन करने के बाद, चूंकि बाहर जाने के चक्कर में शाम की क्लास मिस हो गई ना, तो वो क्लास फिर रात्रि को 8:30 से 9:30 रखी है। तो भोजन करके रिलैक्स रह के फिर 8:30 सभी यहाँ पहुंचाना, तो 8:30 से 9:30 आपको क्लास मिल जाएगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है प्रतिदिन 3 क्लास तो मिले, तो सुबह 2 और शाम को 1। तो ये हुआ बुधवार का। और गुरुवार को कैसे रहेगा, गुरुवार को 5 से 7:30 तो ठीक मंगल जैसे ही, मतलब 5 से 6 योग करो आके यहाँ पे, और 6 से 7 क्लास, 7 से 7:30 योग, और 7:30 बजे अनुभव की लेन देन, और उसके बाद भोजन के लिए प्रस्थान। तो आने वाले 3 दिन की दिनचर्या क्लियर हुई सभी को, और फिर 5वें दिन तो सुबह में अमृतवेला, मुरली, नाश्ता और फिर जाने के प्रस्थान करने की तैयारी हो गए। यही बताते हैं ना, 5 दिन चल रहे हम भट्टी करने के लिए। तो 5 दिन की दिनचर्या क्लियर हो गई सभी को, हाँ। तो अब हम आते हैं विशेष डायरेक्शंस पर। एक तो इस दिनचर्या के अनुसार चलेंगे और साथ साथ कुछ विशेष डायरेक्शंस को भी फॉलो करेंगे। तो क्या है विशेष डायरेक्शंस? 3 मौन धारण करने होंगे। पहला मौन मुख का मौन, दूसरा मौन मन का मौन, और तीसरा मोबाइल का मौन। 3 मौन धारण करने होंगे, दिनचर्या के अनुसार चलना होगा, तब सचमुच आप देखेंगे कि ज्ञान मानसरोवर की भट्टी में सचमुच आत्मा में परिवर्तन आया है। आत्मा तप कर सोने जैसे कुंदन बनकर चमकने लगी है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है, ब्राह्मण से फरिश्ते की ओर हम बढ़ चुके हैं, ये फीलिंग आएगी आपको। तो 3 मौन में से पहला मौन मुख का मौन। अब मुख का मौन रखने के लिए कोई ताला तो इन्वेंट हुआ नहीं है जिसको हम ताला लगा दे और होठ खुले ही नहीं, आवाज निकले ही नहीं। और वैसे भी आवाज में आने का तो लंबे समय का संस्कार है, तो अगर मुख का मौन रखेंगे भी थोड़ा सा भी अटेंशन हटेगा और आवाज निकल आएगी। तो बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं भट्टी में आई हूँ, आया हूँ, और मुझे मुख का मौन उस पर अटेंशन रखना है, क्योंकि आदत अपना काम करती है, लेकिन आदत के परिवर्तन के लिए फिर अटेंशन की आवश्यकता होती है। तो अपने आप को अटेंशन दिलाएंगे। लेकिन हाँ, सुबह अमृत वेले से लेके 8 बजे तक, मुरली क्लास तक, संपूर्ण मौन धारण करेंगे। उस पर बहुत अटेंशन देना है कि वहां कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, बाकी 8 बजे के बाद वैसे तो रहेंगे मौन में ही, लेकिन अगर जहां जहां आवश्यकता पड़ती है कम्युनिकेशन करने की तो भले करें, लेकिन फिर ये स्लोगन अवश्य याद रखें, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इस स्लोगन को ध्यान में रखते हुए अगर आवश्यकता है तो ही कम्युनिकेशन के लिए आवाज में आएंगे, अन्यथा नहीं। वैसे ही कहा कि जिम्मेवारियां तो है नहीं, जो कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेवारियां होगी वो तो टीचर बहनों को, जिन्होंने संभालना है ग्रुप को, है ना। तो आप लोगों को तो इतनी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, फिर भी जब टीचर बहने कम्युनिकेट करेगी तो थोड़ा आपको भी आवाज में आना होगा। तो जहां सिर्फ आवश्यकता है वहीं आवाज में आना, और आवाज में आते समय कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इस स्लोगन को ध्यान पे रखना। दूसरा मौन है मन का मौन। क्या होता है मन का मौन? क्या होता है मन का मौन? व्यर्थ नहीं चलाना और नेगेटिव नहीं चलाना। तो फिर वो नहीं चलाएंगे तो क्या चलाना पड़ेगा? पॉजिटिव चलाना। पॉजिटिव तो जल्दी आता नहीं है, पॉजिटिव तो जल्दी आता नहीं, तो फिर मार्जिन मिल जाएगी नेगेटिव को ही, व्यर्थ को ही। और फिर कई बार लोग कहते हैं कि चलो हमने अटेंशन भी रखा, लेकिन बहन जी न इधर से बोलना है न इधर से बोलना है, हमारा सिर नहीं दर्द करेगा, चुप रह के माथा नहीं खराब हो जाएगा, हम लोग तो यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आए हैं, कोई हेडेक क्रिएट करने थोड़ी आए हैं। नहीं, बहुत सारे भाई बहने कहते हैं बहन जी मौन रखते हैं ना हेडेक होता है, परंतु ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि मौन को ठीक से पालन ही नहीं किया। ठीक से पालन की बात तो दूर है, मन के मौन को ठीक से समझा ही नहीं हमने। क्या होता है मन का मौन? जो इन जनरल तो हमने बोल दिया कि व्यर्थ नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पर करना क्या, उससे आखिर बचेंगे कैसे? तो सिंपल है, अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी हो जाने का भी खुलासा क्या है? तो जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, ये सीट है मेरी, मैं यहाँ बैठी हूँ। घर में बैठता है ना व्यक्ति, तो बैठने के लिए सीट होती है। तो ये मेरा घर है जहाँ पे सीट रखी हुई है और मैं उस पर बैठी हूँ। और ये जो एरिया है ये मेरे घर की दहलीज है, या गैलरी है, या बालकनी, या खिड़की, या दरवाजा। और इसके उधर जो है बाहर की दुनिया। तो यूं कहे ये घर की दुनिया, अंदर की दुनिया, ये बाहर की दुनिया, इन दोनों के बीच का पुल, कनेक्टिंग वाली चीज, गैलरी, बालकनी, दरवाजा, खिड़की, दहलीज, कुछ भी बोल दो। अब याद करो बचपन के दिन या बच्चों को, कि बच्चे बार बार क्या करते हैं जब घर में होते हैं? बालकनी की तरफ भाग जाते हैं, गैलरी में जाके खड़े हो जाएंगे, खिड़की से झांकते रहेंगे, दरवाजे से झांकते रहेंगे, करते हैं ऐसे। तो वहां पे खड़े होके बाहर वालों को देखते रहेंगे, बाहर वालों को सुनते रहेंगे, और कभी कभी तो उनके साथ इंटरेक्ट भी कर लेंगे। और वो सब एंजॉय करने में कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं। जब थोड़ी भूख आदि कुछ लगा तो थोड़ा सा फिर यू टर्न लेते हैं, पलटी मारते हैं कि चलो अभी अंदर भूख लगी, मम्मी भूख लगी है, अरे बेटा कब से तेरे को आवाज दे रही हूँ, अच्छा मेरे को तो कुछ नहीं सुनाई दिया, कैसे सुनाई देगा, सारा ध्यान तो बाहर था, आंख सारी बाहर लगी पड़ी थी, कान वहीं लगे पड़े थे, मुख वहीं लगा पड़ा था, और बिना मन बुद्धि के तो ना आंख देख सकती है ना कान सुन सकता है। तो मन बुद्धि किधर थे, बाहर की दुनिया में थे, तो अंदर वालों का न सुनाई देगा, न अंदर वाले दिखाई देंगे, न अंदर वालों के साथ कम्युनिकेशन होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब यू टर्न लेंगे। पहले क्या करके रखा था, बाहर वालों को फेस, घर वालों को पीठ, लेकिन फिर जब यू टर्न लिया अर्थात दुनिया को फेस और अंदर वालों को, सॉरी दुनिया को पीठ और अंदर वालों को फेस, तब जाके अंदर वालों से कम्युनिकेट कर सके, सुन सके, देख सके। तो मन का मौन भी यही है और कुछ नहीं है। सारा दिन हमारे मन बुद्धि इंद्रिय रूपी गैलरी, बालकनी, खिड़की, दरवाजा जो भी नाम दे दो, वहां पर आके खड़े हो जाते हैं और फिर बाहर वालों को देखेंगे, बाहर वालों से बात करेंगे, बाहर वालों का सुनेंगे, जो खाया था उसका वर्णन करेंगे, जो देखा था उसका वर्णन करेंगे। तो ये क्या हुआ, वो छोटे बच्चे की तरह गैलरी में खड़े होकर बाहर फेस करके घर वाले को पीठ दे देना, मुझे क्या चिंता पड़ी है अंदर की, वो तो मम्मी देखेगी, मेरा तो काम है इधर देखना। लेकिन हम भट्टी करने आए हैं ना, तो अभी हमारा ओना होना चाहिए, मैं भट्टी करने आया हूँ, ये तो मैं वहां पे भी कर रहा था, बाहर मुखी उधर भी था, तो यहाँ क्यों आया फिर, वहां तो मैं ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारियां थी कि बहन जी हम थोड़ा समय निकालते भी है, सोचते भी है, लेकिन फिर कोई ना कोई जिम्मेवारी हमको खींच के हमें अंतर्मुखी से बाहर्मुखी बना देती है। लेकिन यहाँ तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, हाँ बहने मेहनत करके आपको यहाँ क्यों लेकर आती है कि हमारे भाई बहने कुछ समय के लिए जिम्मेवारियों से मुक्त अंतर्मुखी हो सके और उस अंतर्मुखी स्टेज में आकर अंदर जो बैठी आत्मा है उसको देखें, उसको सुने, उसके साथ बात करें। तो बात तो करने की मार्जिन यहाँ पर भी है, तभी कहा ना मन के मौन को हम सही में समझ नहीं पाते हैं। हम बोलते इतना चुप रहेंगे तो माथा खराब हो जाएगा, आपको बात करने की मनाही थोड़ी है, लेकिन हम बाहर वालों से नहीं, अंदर जो आत्मा बैठी है, जो सेल्फ है, उस सेल्फ के साथ अपॉइंटमेंट हो तुम्हारा, सेल्फ के साथ डायलॉग चले, उस स्वरूप का दर्शन करो, उस आत्मा के जो गुण है उसको अनुभव करो, उस फ्रिक्वेंसी पर अपने आप को लेकर आओ। जब उस फ्रिक्वेंसी पर अपने आप को लेकर आएंगे तब तो इजीली बाबा बोलते ही उसके साथ कनेक्ट होंगे, वरना तो भक्ति में भी भगवान को हम याद कर रहे थे पर कनेक्ट नहीं हुए ना, यही तो कारण बताते हैं ना जिज्ञासु जब आता है पहली बार तो कोर्स करने, कि हमारी फ्रिक्वेंसी उसके साथ मैच ही नहीं होती है, इसीलिए चाहे कितना याद कर लो वहां से हमें प्राप्ति नहीं होती है। तो अंतर्मुखी मन का मौन इसी पर्पस के लिए है कि अंदर जाएं, स्वरूप का दर्शन करें, कितनी चमक है मेरे स्वरूप में, मेरे गुण के वाइब्रेशन कितने फैल रहे, मैं कितना अनुभव कर रहा हूं, उसको फैलाओ, अनुभव करो, और फिर बाबा को याद करके उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, फिर उसके साथ डायलॉग करो। तो बोलने की तो मार्जिन है यहाँ पे, सुनने की भी मार्जिन है, इंटरेक्ट करने की भी मार्जिन है, सब तो है, देखने की मार्जिन है, बस सिर्फ क्या करना है, बाहर वालों से नहीं करके भीतर जो आत्मा बैठी है उसको देखें, अंतरात्मा की आवाज सुने। बाबा कई बार कहते हैं बाबा को भक्तों की पुकार सुनाई दे पड़ रही है, कितना याद कर रहे हैं, तुमको नहीं सुनाई पड़ती है? कैसे सुनाई पड़ेगी? बच्चे को मम्मी ने कहा मैं कितना याद आवाज दिया, बोलते मैंने तो नहीं सुना, कैसे सुनाई देगा? बाहर के शोरगुल की तो आवाज उसमें आ रही है, तो अंदर की कहां से सुनाई? क्योंकि अंदर की आवाज तो धीमी होती है, उस धीमी आवाज के लिए साइलेंस होना जरूरी है। तो अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी हमको, क्योंकि अंतरात्मा राइट मार्गदर्शन देती है, हमारे अंदर क्या कमियां है वो बताती है बराबर। वो अंदर झांकने पर ही रियलाइजेशन होता है, ऊपर ऊपर से तो जो गलतियां होगी भी ना, हमको लगता है ये तो चलता है ना, लेकिन जब अंदर जाएंगे, एकांत में बैठेंगे, वो सब अंतरात्मा आपको बताएगी कि बाबा जो कह रहे हैं उसको मैंने अभी कितना जीवन में लाया है, कितना लाना अभी भी बाकी है, वो आपको बताएगी पूरा अंतरात्मा। तो बिना मन के मौन के वो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए क्लासेस की अवधि भी हमने सिर्फ एक एक घंटा रखी है, ज्यादा नहीं रखी है, और दिन भर में सिर्फ 3 क्लास, और जो भी क्लास में सुनाया जाएगा वो भी नया कुछ भी नहीं सुनाएंगे, जो आप लोग सुन चुके हैं वही सुनाएंगे। क्यों क्यों नहीं नया सुनाएंगे? आप कहेंगे जो सुना हुआ सुनना हम सुनेंगे तो वो तो हमको पहले से ही पता है, हम तो नया सुनने आए हैं, परंतु हमें याद होना चाहिए कि हमारे एग्जाम्स के दिन पास में आ गए हैं, और किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स के दिनों में सिलेबस चेंज नहीं होता है, नया एडिशन नहीं होता है, बल्कि एग्जाम से पहले ही जो सिलेबस फिक्स किया गया था एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ा के पूरा कर दिया जाता है, और फिर प्रिपरेशन के लिए छुट्टियां दे दी जाती है कि जाओ जो पढ़ाया है उसी को घोट घोट के गुट्टी बना के अपने आप को पिलाओ, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे आप उसका आंसर देने में सक्षम हों।